यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी जय जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा वन यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा वन विजय राधा माधव कुंज Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Sarasvatim Vyasam,
कतोर्जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्ठिके श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय आठ और श्लोक संख्या 21। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहन्तुः। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहन्तुः। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहन्तुः। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहन्तुः।
Thank you.
कालेन समय के
व्रजता
बीतने पर
अल्पेन
अल्पावधि
गोकुले
गोकुल या व्रजधाम में
राम केशवो
बलराम तथा कृष्ण ने
जानुभ्याम
घुटनों के बल
सह पाणिभ्याम
हाथों के सहारे
रिंगमाणो
रेंगते हुए
विजहंतु
खिलवाड़ किया। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिदान श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ समय बीतने पर कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज भूमि में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। तात्पर्य, एक ब्राह्मण भक्त कहता है, स्मृतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीत अहम इह वंदे यस्य आलिंदे परम ब्रह्म अहम इव नंदम वंदे अस्य आलिंदे परम ब्रह्म। भले ही अन्य लोग भवसागर से डरकर वेदों पुराणों तथा महाभारत की पूजा करे, किंतु मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंगते हैं। महाभागवत को केवल अर्थात भगवान में समा जाना नरक के समान लगता है, नरकायते, किंतु यहाँ पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। जब तक कोई कृष्ण लीला के विशेषतया कृष्ण की बाल लीलाओं के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वह वास्तविक कैवल्य में लीन रहता है। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहितां भागवत 1.7.6। व्यासदेव ने नारद के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवत की रचना की, जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदैव के लिए मुक्त हो जाए। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीत अहम इह नंदम वंदे यस्य आलिंदे परम ब्रह्म। श्री प्रभुपाद की ओम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलिन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवमं सार्वद्वैतं सार्वभूतं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर महत पाद इमा पुरो विभु निर्मायक्षेते यद मोक्ष पुरुष भुंगतेर गुणान षोडश षोडशात्मकम् स्वलं प्रसृष्टं भगवान् वचांसि मे। जयतां सुरतों पंगुं मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्रीराधा मदन मोहन।
हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव पुत्र रामायण की, श्री गौरदाय की, श्री गौबाद की। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य की बात है भागवत का श्रवण कर रहे हम लोग प्रतिदिन प्रभुपाद जी की कृपा से। वास्तव में श्रवण ये मुख्य धर्म है मनुष्य के लिए, सुनना, क्योंकि इस भागवत को श्रवण करने से हमारे हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि है वो खुल जाती है। इस संसार में आने का कारण या इस संसार में दुखी होने का कारण, भय का कारण केवल अज्ञान है। यदि ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, या भय से मुक्त हो सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं कि आप रात में अंधेरे में जा रहे हैं और हमारे घर के आगे कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है या तो लटक रही है, और जब अंधेरा होगा तो रस्सी हवाएं के कारण थोड़ी हिलती है, तो अंधेरे में ऐसा आभास हो जाता है कि ये तो सांप है, और कभी डर भी जाते हैं, बाप रे बाप सांप है, वहां से भाग जाते हैं क्योंकि अंधेरे में दिखाई दिया। परंतु सुबह में जब सूर्य उदित होता है और हम वहां पर नजर डालते हैं तो दिखाई पड़ता है कि ये तो रस्सी है, तो हम हंस के अपने पर हंसी आ जाते हैं, अरे ये तो रस्सी है, हम खामोखा डर गए। वैसे ही इस संसार में भय इसीलिए है क्योंकि अज्ञान है ना। यदि ज्ञान हो जाए तो आत्मा के लिए कोई भय नहीं है। अज्ञान के कारण इस बात को ऋषभ देव जी भागवत के पंचम स्कंद के पांचवें अध्याय के आठवें श्लोक में बता रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए। जैसे हम लोगों ने सुना होगा, वो आप लोगों ने सुना होगा भागवत की महिमा में स्कंद पुराण या पद्म पुराण के अनुसार बताया जाता है गोकर्ण जी की कथा धुंधुकारी की, जो भागवत सुनने से एक प्रेत के रूप में था, परंतु भागवत सुनने के कारण वो प्रेत जो है वो वास की डंडी में आकर के बैठ गया था, और 7 दिन भागवत सुनने के कारण उनके 7 जो गांठ थी वो खुल गई। और कौन सी गांठ थी? वह ज्ञान की गांठ थी। और हम सबके जीवन में ये 7 गांठ जो है बंधी हुई है, इसको खोलना बहुत जरूरी है। कौन सी गांठ है? तो कैसे पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावम एतन कयोर मिथ हृदय ग्रंथि माहो। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली जो गांठ है पुंसा, व्यक्ति ये समझता है मैं शरीर हूं। क्या समझता है? मैं शरीर हूं या मैं व्यक्ति हूं। तो सबसे पहली जो गांठ है वो अज्ञान की गांठ है ना। ये तो अज्ञान है मैं शरीर हूं, ज्ञान तो यही है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का दास हूं। परंतु ये ग्रंथि इतनी मजबूत तरीके से बंध गई है कि अपने आप को आत्मा स्वीकार करने या भगवान का सेवक स्वीकार करने में बहुत कष्ट होता है। लोग नहीं कर सकते क्योंकि जब सेवक स्वीकार करते हैं तो सेवक का धर्म भी निभाना पड़ता है। तो सबसे पहली जो गांठ है अज्ञान की गांठ पुंसा। और फिर जब ये अज्ञान होता है कि मैं शरीर हूं तो फिर क्या होता है? पुंसा स्त्रिया। और जब किसी स्त्री के साथ विवाह करता है या स्त्री पुरुष के साथ विवाह करती है ना, पहले सबसे पहले शरीर को अपना मानता है, फिर शरीर के साथ जिसका संबंध हो जाता है उसे ये मेरी है। ये दूसरी गांठ पुंसा स्त्रिया। पहले तो मैं शरीर हूं, फिर ये पत्नी मेरी है या ये पुरुष मेरा है, ये दूसरी गांठ है। और ये गंठे तो इतनी मजबूत है कि इसको खोलना बड़ा कठिन है ना। उदाहरण देते हैं भागवत में कि जैसे गांव में वो क्या कहते हैं, चावल को पीसने के लिए या कुछ पीसने के लिए बेल को बांधा जाता है डंडी खोड़ के, है ना, भूसा में से वो निकालने के लिए। तो बेल जो होता है उनको लंबी रस्सी से बांधा होता है और वो गोल गोल घूमता रहता है पूरे दिन, लेकिन वहीं पर घूमता है क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक ही स्त्री के साथ जो बंधा हुआ है और स्त्री के बहाने वो घर से बंधा हुआ है, तो वो जो बंधा हुआ है वो कहीं भी जाए लेकिन घूम कर वापस नहीं आता, चाहे वहां दुख मिले कष्ट हो जाए लेकिन घूम करके वहीं पर आ जाता है, कभी 2 दिन कभी 1 महीना कभी 1 साल, लेकिन आता वहीं है वापस, क्योंकि वो ऐसी रस्सी से बंधा हुआ है, वो रस्सी तो दिखती भी नहीं है, है ना। तो हृदय ग्रंथि माहु, ये जो है हृदय की ग्रंथि है, गांठ है पुंसा स्त्रिया। और फिर आगे कहते हैं अतो गृह सुत आप्त वितेर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। जब स्त्री के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो जब अकेला व्यक्ति रहता है तो कहीं भी घूम सकता है, है कहीं भी घूमता है, अवधूत बन जाता है, कभी मंदिर में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। परंतु जब 2 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं रहने के लिए घर चाहिए, भले भाड़े का ही हो लेकिन चाहिए, छोटा या बड़ा। तो तीसरी गांठ जो है वो घर की गांठ है ना। गृह क्षेत्र, ये घर मेरा है। पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावम एतत् तयोर मिथ्या ग्रंथि माहु। अतो गृह, और जब घर में रहने लगता है तो फिर आगे चलकर पुत्र प्राप्त होता है सुत, ये जो है चौथी गांठ। आप गिनिएगा गांठ, 4 गांठ हुई। सुत गृह सुत आप्त, आप्त माने रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव से संबंधी है, ये भी एक ग्रंथि है, जाना पड़ता है ना। व्यवहार में किसी की शादी है विवाह है तो रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि ये गांठ है, बंधे हुए हम इस गांठ से कि ये मेरे हैं, यदि मेरे नहीं है वहां हम नहीं जाते, जाते नहीं जाते। और भी एक बात इसमें से आती है कि संसार में सबसे पहले व्यक्ति को ये होता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से जो रिलेशन है ये सब मेरे हैं और शरीर से जिनका रिलेशन नहीं है वो मेरे नहीं है, है ना। इसलिए हमारे शरीर से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन संसार में तो ऐसे कई लोग मर रहे हैं, कभी दुख होता नहीं होता, क्योंकि ये ग्रंथि है ये मेरा है। और वैसे ही एक गृह घर मेरा है, क्षेत्र घर कहिए या खेत कहिए जो भी है, ऑफिस कहिए, इसमें भी ये ग्रंथि बन जाती है कि मेरा है। तो सूत गृह आप्त स्नेही जन जो भी है, वितेर जनस्य, ये सब ये बहुत बड़ी गांठ है, ग्रंथि है और बहुत बड़ा ज्ञान है। वास्तव में दूसरे अज्ञान तो एक बार जांच सकते हैं, परंतु ये जो है ना जनस्य ये सब मेरे हैं, इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान से मांगा है, पता है कहाँ मांगा है, शिक्षाष्टकम में हम लोग रोज गाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए मुझे जन नहीं चाहिए। जन ये जो है ये बहुत बड़ा बाधा है भक्ति में, और वहां पर जन के ऊपर कई आचार्यों ने अपना विचार दिया है कि एक तो व्यक्ति अपने परिवार जन को अपना मानते हैं, और मान लो कोई परिवार को छोड़ देता है भक्त बन जाता है गुरु बन जाता है तो फिर उनकी शिष्यों में भी आसक्ति हो जाती है कि जनस्य है मेरे। तो ये सब ग्रंथियां हैं और जनस्य, और फिर आके कहते हैं कि जन मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है। कितनी गांठ हुई है, पांच हुई कि छह, पांच हो गई। तो जब घर है पत्नी है पुत्र है तो फिर बिजनेस भी होगा, है ना, ये तो करना ही पड़ता है, इसके बिना तो चलेगा नहीं। तो फिर ये जो है बिजनेस का क्षेत्र ऑफिस है, ये जो है हमारी गांठ है, कौन सी गांठ है, सच्ची गांठ। और अंत में इन सब को मेंटेन करने के लिए गांधी बाबू चाहिए ना धन है? ये धन की गांठ है। तो इस प्रकार से सात गांठ हमारे जीवन में है, और कैसी गांठ है, अज्ञान की गांठ। यदि एक गांठ होती तो खोलने में आसानी हो जाती, लेकिन जब बहुत जब गांठ बढ़ जाती है ना तब उसे क्या कहते हैं हिंदी में, गुजराती में तो बहु गांठ दोरामा के वधी जाए ना, एटले घूस कहवाय, है ना, पछी घूस काढ़ी बहु मुश्किल थी। हिंदी में क्या कहते पता नहीं। तो गांठ तो सब में होती है ना, चोटी में गांठ होती है, कोपिन में गांठ होती है, धोती में गांठ, गांठ के बिना तो चलता नहीं। परंतु ये जो ग्रंथियां है वो तो बड़ी खतरनाक है। तो जब बहुत गांठ है जब बन जाती है तो उसको ऐसे तोड़ने मरोड़ने से नहीं खुलती, वो उसको बिल्कुल एकदम छोटा दृष्टि करके बिल्कुल निकालना पड़ता है, धीरे 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 खोल के। वैसे कभी कभी इस गांठों को तोड़ने के लिए कुछ लोग भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, कभी वृंदावन भाग जाते हैं, चलो ये सब छोड़ो, ऐसे ये ग्रंथि टूटने वाली नहीं है, हृदय में है। इसको भागवत से या भक्त भागवत से भागवत सुनते हुए धीरे 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 इस ग्रंथियों को खोलना चाहिए, क्योंकि भागवत सुनने से सारी ग्रंथियां जो है खुल जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि नाम सिद्ध्यन्ते सर्व संशय, भागवत श्रवण से ये सारी जो हृदय की ग्रंथि है वो टूट जाती है। तो ये सारे अज्ञान की गांठ है और उसको खोलने के लिए संतों की दृष्टि से इन भागवत को सुनते सुनते ये सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष नारद मुनि सप्तम स्कंद में इस बातों को बता रहे हैं, जब गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हैं कि गृहस्थ के लिए क्या पालन करना चाहिए, तो कहते हैं कि वो अपना कर्तव्य करे परंतु वो भगवान की कथा के संपर्क में रहे। कभी अपने घर पर भक्तों को बुलाए, या प्रभुपाद जी कृपा से अभी तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर प्रतिदिन भागवत होता है, सुनने के लिए आए और भक्तों के मुख से भागवत कथा नित्यम भागवत सेवया सुनते 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 क्या होगा, बोले व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है लेकिन ये सुनता रहेगा तो आखिर में हृदय से सारी ग्रंथियां निकल जाएगी। बाहर से भले लगता है कि ये तो इसी में डूबा हुआ है लेकिन भीतर से सब छोड़ दिया है, छूट जाता है। तो ये है भागवत जो हम लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो इन भागवत से ही सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। और जब अज्ञान चला जाएगा तो भय चला जाएगा, दुख चला जाएगा, शोक चला जाएगा और भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब अज्ञान चला जाएगा तो स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, मेरा क्या स्वरूप है, असलियत क्या है। तब असलियत जब पता चल जाएगी तब तो आत्मा का भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है या उनका जो स्वरूप है सेवा करना, उसमें तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। दुख इसलिए है क्योंकि अज्ञान है और अज्ञान के कारण जीव इस संसार की सेवा करता है और इसी के कारण दुख भय शोक को प्राप्त करता है। तो यह है भागवत। और आइए आज के जो श्लोक है जिसमें सबसे पहला शब्द दिया गया है कालेन व्रजतालपेन, कुछ समय बीतने पर, कहते हैं अल्प समय बीतने पर अब भगवान ये लीला कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है प्रकट बिल्कुल अपनी आंखों से भगवान की लीला को देखते हुए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि वो किया था, वो अभी देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कुछ समय बीतने पर भगवान अब राम केशव रेंगने वाले लीला कर रहे हैं। सबसे पहले शब्द काले ने दिया, काले ने का क्या अर्थ है कुछ समय बीतने पर, तो आचार्यगण कहते हैं कौन सा समय, अब वृंदावन जो है वो तो काल से अतीत है, वहां तो कभी समय बीतता नहीं है, नहीं बीतता है ना, यहाँ पर तो हम काल के गाल में हैं, इसीलिए समय के अनुसार सब बदल जाता है, हमारा समय कटता है, काल के साथ साथ हमारी उम्र भी कटती है, आयु भी कटती है, शरीर भी जर्जर होता है, लेकिन तो वहाँ कोई समय का कोई प्रभाव नहीं है, वो काल से अतीत है। भगवान कहते हैं न तद सूर्य, वो चंद्र से या सूर्य से प्रभावित नहीं है, वो तो मेरे स्वयं के प्रकाश है, इसे काल की अवधि वहां बाधित नहीं होती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ काल बीतने पर क्या अर्थ है, तो कहते हैं कि काल का अर्थ यहां पर है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इस मूड में है कि अब जो है भगवान, अभी तक जो समय बीत रहा है मतलब भगवान ने अभी जो अपनी माधुर्य लीला में ऐश्वर्य दिखाया, लीला माधुर्य में कर रहे हैं बाल लीला, परंतु उसमें भी ऐश्वर्य दिखाया है ना, जैसे पूतना को मारा तो भगवान का षड ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य क्या है, बल दिखाया ना, केवल स्तनपान करने से जो है पूतना मर गई, ऐसे कई शक्तासुर या त्रिनावर इत्यादि जो असुरों को मारे, ये समय बीतने पर सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि एक काल बीतने पर अब जो भगवान है अब बिल्कुल माधुर्य मंडित लीला कर रहे हैं। अभी की लीलाओं में उन्होंने किसी न किसी को मारकर ऐश्वर्य दिखाया, परंतु अब जो लीला कर रहे हैं वो बिल्कुल माधुर्य मंडित है। तो इन लीलाओं में किसी को मारेंगे नहीं, ये सब लीलाएं क्या है पता है, अब भगवान। और दूसरा काले ने कहने का अर्थ है कि अब तक तो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे थे और लीला कर रहे, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो चलना सीख गए हैं। किसके द्वारा? तो कहते हैं जानुभ्याम सहपाणिभ्याम। जब बच्चा प्रारंभ में चलना सीखता है तो सबसे पहले वो अपने घुटनों के द्वारा या हाथ के सहारे चलता है, है ना, चार पैर पर चलता है, दो पैर और हाथों के सहारे। तो हमारे ठाकुर जी अब जो है चलना सीख गए हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काले न व्रजा व्रजताल पे न। अब काल बीतने पर, मतलब ये सब लीलाएं होने के बाद, अब जो है कृष्ण चार पैर पर चलना सीख गए। फिर आगे कहते हैं काले न व्रजताल पे न गोकुले, गोकुल में, गोकुल वाल भी बहुत बड़ा अर्थ है। गोकुल किसे कहते हैं? गोप गोभी अलंकृतम, जहां पर गोप गोपी और गाय रहते हैं, गोवर्धन भी है, यमुना भी है, परंतु विशेष अर्थ गोप गोभी अलंकृतम, गोपी गोप गाय जहां पर रहते हैं, ये है गोकुल। जहां पर गाय और गोपी और गोवाल से भरा हुआ है ब्रज, इस ब्रज में। और दूसरा कहने का अर्थ है कि आज तक जो लीला हो रही थी वो नंद बाबा के आंगन में ही हो रही थी, मतलब सीमा में थी, उससे बाहर नहीं जाते थे, परंतु अब जो है भगवान, अभी जो है कृष्ण रास्ते पर आ रहे हैं, है? रास्ते पर अब रेंगने वाली लीला कर रहे हैं। गोकुले राम केशव, भगवान के दोनों भगवान के नाम दिए जा रहे हैं, राम और केशव। राम माने बलराम जी और केशव माने भगवान कृष्ण। इन संबोधन देने का या नाम देने का विशेषण, नाम देने का उनका विशेष भाव प्रकट होता है। कृष्ण बोल सकते हैं परंतु केशव, सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि अब जो भगवान रेंगने वाली लीला करते हैं, मतलब अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पांव से रास्ते पर चल रहे हैं, और उस ब्रज की धूल में जो कभी कभी दूध सास मक्खन और दही से भरा रहता है, कीचड़ होता है, तो उसमें बिल्कुल रेंगते हैं, दोनों खेल रहे हैं। और कभी कभी रास्ते में से कोई निकलता है तो उनको ऐसा आभास होता है कि मेरी माँ है, फिर गोपी निकलती है तो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, और जब आगे चलकर बहुत आगे निकल जाते हैं फिर पता चलता है कि अरे ये तो मैं यशोदा नहीं है, तो डर जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। तो ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं रास्ते पर। तो सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि परीक्षित सावधान, ये भले ही ऐसी लीला कर रहे हैं लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। केशव, ये केशव है, केशव का अर्थ बताया गया है, क माने ब्रह्मा जी, स माने शिव जी, और व उनको भी अपने वश में करके रखते हैं केशव, ये भगवान है। और यहां पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एक बालक की तरह रेंगने वाली लीला कर रहे हैं। तो सावधान, क्योंकि सावधान करना पड़ता है भक्तों को, नहीं तो कभी कभी अज्ञान हो जाता है कि ये भगवान थोड़ी है, क्योंकि भगवान की माया से। तो इसलिए संबोधन दे रहे केशव, नाम उच्चारण कर रहे हैं सर्वनाम। और राम, केशव के और भी अर्थ है, जिनके केश बहुत सुंदर है, केशव, जिन्होंने केशी दैत्य को मारा इसलिए केशव। और दूसरा ये भी अर्थ प्रकाशित होता है कि ये वही भगवान है जिन्होंने अलग अलग अवतार लेकर बड़े बड़े असुरों को मारा है ना। आपने वो पढ़ा होगा, सुना होगा, हम लोग सुनते सब लोग, जो केशव धृत, हम नरसिंह मातृमी भी गाते हैं, है ना, नरहरि रूप केशव धृत, वो केशव ने ही नरहरि रूप धारण किया, जय जगदीश, जैसे पूरा जो है दशा दशावतार स्तोत्र उसमें दिया गया है जयदेव गोस्वामी के द्वारा, क्षिति विशिख तो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आत्म तो केशव धृत मीन शरीर, इस प्रकार से पूरा जो है और सब में पीछे आता है केशव धृत। तो ये वही भगवान है जिन्होंने बड़े बड़े असुरों को अन्य अन्य अवतार लेकर, कभी मत्स्य अवतार धारण किया, कभी लीला के लिए, कभी भक्तों की रक्षा के लिए, कभी कूर्म अवतार धारण किया, कभी सुअर अवतार धारण किया, इस प्रकार अलग, कभी नरहरि अवतार धारण किया। ये वही भगवान केशव धृत। तो केशव के लिए बता रहे हैं राम केशव, और राम जो है क्योंकि ब्रज में भगवान का जो आना है वो अपने भक्तों को ब्रज जन रंजन, है ना, हम गाते हैं ना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। ये ब्रज रंजन, ब्रज के भक्तों को आनंद देना ही इस राम और केशव का मुख्य कर्तव्य है। और बलदेव जी के लिए बताया है कि वो तो लोक रमणा दीति राम, जो सबको रमाए अपने आनंद में, आनंद दे, उसे राम कहते हैं। इसलिए कृष्ण का भी एक नाम राम है, क्योंकि वो अपने आनंद से ब्रज को, ब्रजवासियों को, भक्तों को, गोपियों को रमाते हैं अपने आनंद में, इसलिए राम उनका भी नाम है। तो लोक रमणा दीति राम, तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो राम और केशव दोनों ने जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो विजहंतुह, ब्रज में वो विहार करने लगे इस प्रकार से। और चलते चलते कई प्रकार की क्रीड़ाएं वो करने लगे, भागते थे और कभी कीचड़ में, और पूरा जो शरीर है धूल धूसरित हो जाता था। और इस सच्चिदानंदमय क्रांतिमय स्वरूप भगवान का जो विग्रह है, बाल विग्रह, वो जब ब्रज की धूल से धूसरित हो जाता था तो इतना सुंदर लगता था, इतना मधुर लगता था कि जब वो वापस आ जाते तो माँ तुरंत उनको दोनों माताएं अपनी गोद में उठा लेती थी और अपने हृदय से लगा लेती थी। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे पहले कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण कह रहा है, कौन ब्राह्मण है बताएं? ब्राह्मण ने कहा है स्मृतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारत मन्य भजन्तु भव भीत अहम इह नंदम वंदे यस्य आलिंदे परम ब्रह्म। प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण कह रहा है कि श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारत मन्य भजन्तु भव भीत, इस संसार के भय के कारण और दुख के कारण भक्ति करने के लिए लोग अलग अलग श्रुति स्मृति पुराण या महाभारत पढ़ते हैं और उनका आश्रय लेते हैं और अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। परंतु वो ब्राह्मण कह दे कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं किसी की पूजा नहीं करता हूँ, न महाभारत की न अन्य ग्रंथों की या स्मृति या पुराणों की। तब आप क्या करते हैं? बोले मैं तो उस नंद का भजन करता हूँ। क्यों नंद का भजन करते हैं? यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, जिसे जैसे सभी वेद और शास्त्रों को पढ़ करके या सुन करके जो समझना है भगवान को, परम पूर्ण ब्रह्म को, वो परम ब्रह्म तो उस नंद के आंगन में खेल रहा है, इसलिए उनका भजन करता है। ये ब्राह्मण जो है दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए तब वल्लभाचार्य के यहाँ रुके थे, उस समय रघुपति उपाध्याय नाम के ब्राह्मण उनको मिलने के लिए आए थे और उसी के साथ जब वार्तालाप है चैतन्य महाप्रभु का, वहां पर एक ब्राह्मण कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि आप धन्य हैं। फिर बहुत लंबा थोड़ा वार्तालाप भक्ति के बारे में या भक्ति रस के बारे में हुआ। तो यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेल रहे हैं मैं तो उसी का भजन करता हूं, क्योंकि यही धन्य है गोपियों और यशोदा को, नंद को प्रतिदिन इसी भगवान की इन प्रकार इसी प्रकार की लीलाओं को देखने में आनंद आता था। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में भगवान की इन लीलाओं को सुनकर जब इसका ध्यान करते हैं तो इससे बड़े आनंद का विषय कोई नहीं है, क्योंकि आचार्य ने इस बात पर बहुत लिखा है कि कालेन समय बीत रहा था। तो कैसा बीत रहा था? बोले यशोदा और नंद का समय बिल्कुल आनंदमय बीत रहा था, क्योंकि इस प्रकार की अनेक लीलाएं ठाकुर जी करते रहते थे। और अब आगे चलकर फिर से तीन चार श्लोक के बाद आता है कालेन, क्योंकि आगे चलकर फिर ठाकुर जी जो है भगवान घुटने पर चल रहे हैं, अभी वो खड़े हो जाएंगे, तब फिर यही शब्द आएगा कालेन व्रजता मल्पेन। थोड़े समय के बाद फिर से वो अब चलने लगे हैं। तो यहाँ पर भगवान घुटने और हाथों के द्वारा लीला कर रहे हैं। तो वैसे रोज जब वो इस प्रकार चलते चलते किसी गोपी के पीछे चले जाते थे तो गोपियां उसको देखने के लिए मुग्ध हो जाती थी, और जब वो रगड़ करते थे उस कीचड़ में और मिट्टी लग जाती थी तो गोपियां जो अपना काम करते करते जाती थी वहां से निकलती थी, वो देखने के लिए खड़ी हो जाती थी और देखते देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाती थी। भक्तों के लिए यही विषय है भगवान की बाल लीलाओं को, मधुर लीलाओं को सुनना, उसको सुन करके स्मरण करना, स्मरण करके अपने मन में अपने हृदय में इन लीलाओं को बसा लेना। और जब इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो ये लीलाएं जो है हृदय में स्फुरित हो जाती हैं, हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। परंतु इसके पहले जो मुख्य है ये श्रवण करने से, हमारे पास तो बहुत सारी जो गांठें हैं उनको खोलना होगा। हृदय के ऊपर जो गांठें लगी हुई हैं, इन अज्ञान की गांठों को जब खोल देंगे तब श्याम सुंदर जो सभी के हृदय में स्थित है, भक्ति है, वो प्रकट होगी और हृदय में ही भगवान का दर्शन होगा। तो इन लीलाओं को श्रवण प्रतिदिन हमें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये करते रहना चाहिए। भक्तों के लिए यही विषय है। और खास करके जो भगवान को अपने वात्सल्य भाव में प्रेम करते हैं उनके लिए इन मधुर लीलाओं का श्रवण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर वात्सल्य भाव वाले सब यशोदा और गोपियां सब कृष्ण को देख रहे हैं और देख करके इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि एक तो सच्चिदानंद विग्रह है, उसमें भी वो व्रज की धूल को अपने ऊपर लगाते हैं तब वो और सुंदर दिखाई देते हैं। इस बात को तो गोपियां भी कहती हैं, है ना, जब भगवान रासलीला में से चले गए तो गोपी गीत में भी वर्णन करती हैं कि दिन परीक्षये नील कुंतले, हमें आपकी वो याद आ रही है कि जो आप दिन परीक्षये, दिन का अंत होने पर गाय को चरा करके जब आते थे तो गाय की खुर से जो व्रज की रज उठती थी और आपके मस्तक पर, आपके मुखमंडल पर लगी हुई थी, और वो हम जब देखती थी तो मुग्ध हो जाती थी। परंतु दुख की बात है कि आज आपका दर्शन नहीं हो पाता। तो इन सब मधुर लीलाओं को या भगवान के स्वरूप को अपने मन में ध्यान करना चाहिए सुनते सुनते, और इसको सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। यही वैष्णव का जीवन है, उन लीलाओं को पढ़ते रहना, सुनते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है। ग्रंथराष्ट्र भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद की निकाय गौधरी प्रेमानंद।